Thank you, Young Women Choir, for that beautiful song. I am grateful.
मैं अपने उद्धारकर्ता के लिए आभारी हूँ और जो निमंत्रण हम सभी को मिला कि मसीह में आइए और उनमें संपन्न हो। मुझे आशा है कि मैं तुम तक वो कुछ पहुंचा सकूं जो उन्हें याद करने, पश्चाताप और बदलने पर सोचती और महसूस करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छी तरह वो अभिव्यक्त कर सकती हूँ जो मेरे दिल में है तुम्हें तीन महिलाओं के बारे में बदलाने और उनकी कहानियों से सीखे हुए सबकों की चर्चा करने द्वारा। मैं शुरू करूंगी रूथ में फॉक्स से, जो जवान औरतों की महादेशी की कई वर्ष पहले। वो उस नियुक्ति पर सेवा 84 वर्ष की आयु तक प्रदान करती रही। बहन फॉक्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ था जब वो 13 वर्ष की थी। उसकी माता और मर चुकी थी जब वो शिशु थी, इसीलिए उसने अपने जीवन की प्रथम 12 वर्ष कई बिना परिवार के साथ बिताना पड़ा। उससे संभलना कठिन होगा क्योंकि उसकी आजी उसे बुरी लड़की कहती थी। आखिरी में रूथ का विवाह हुआ और उसके 12 बच्चे हुए। उसने अपनी अतल गवाही को अपने बच्चों के साथ बांटना और सुसमाचार पर पाठ सिखलाना जब वो उनके पास काम करती थी, पर वो स्वीकार करती है कि उसके बड़े बच्चों को कभी कभी सख्त अनुशासन प्राप्त हुआ क्योंकि वो आसानी से गुस्सा जाती थी और वो हमेशा 10 सेकंड तक इंतजार नहीं करती थी। बहन फॉक्स 104 वर्ष की आयु तक जीवित थी। अपनी लंबी जिंदगी में उसने महान आनंद और कठिन मुसीबतों का अनुभव किया और उसने सिखलाया कि जीवन कुछ कठिन सबक लाता है। पिछले वर्ष मैंने वायोमिंग में इंडिपेंडेंस रॉक पर चढ़ी यह पता लगाने के लिए कि बहन फॉक्स ने कहां 13 वर्ष की आयु में अपना नाम लिखा था। पिछले 140 वर्ष के मौसम ने उसे लगभग मिटा दिया है, पर मैंने मुश्किल से पढ़ सकती थी रूथ में 1867। मैं इस महान नेता और यीशु मसीह की अनुयायी के बारे में मैं और भी जानना चाहती थी, जिससे अपना पूर्ण जीवन काम किए अपने आप को सुधरता के लिए और जिसके आदर्श वाक्य था ईश्वर के राज या कुछ भी नहीं। अगली कहानी है एक महिला की जिससे मैं मेरी कहूंगी। वो एक वफादार आगुआ माता पिता की बेटी थी जिसे सुसमाचार के लिए बहुत कुछ का त्याग किया था। उसका विवाह मंदिर में हुआ था और वो 10 बच्चों की माता थी। वो एक प्रतिभा संपन्न महिला थी जिसे अपने बच्चों को प्रार्थना करना, कठिन कार्य करना और एक दूसरे के प्यार करना सिखलाया था। वो कहती थी कि ईश्वर मुझे एक छोटी प्याली कॉफी के लिए स्वर से बाहर नहीं रखेगा, पर उस छोटी प्याली कॉफी के कारण वो मंदिर सिफारिश के लिए योग्य नहीं थी और ना ही उसके वो बच्चे जो उसके साथ कॉफी पीते थे। फिर भी अच्छी बूढ़ी उम्र तक रह सकी और आखिरी में योग्य हुई फिर से मंदिर जाने और उसमें सेवा प्रदान करने के लिए। उसके 10 बच्चों में से सिर्फ एक योग्य मंदिर विवाह हुआ और उनके वंश के कई सदस्य जो अब 5वीं पीढ़ी में हैं, पुनर्स्थापित सुसमाचार के आशीर्वादों के बिना है जिन पर वो विश्वास करती थी और उनके पूर्वजों ने जिसके लिए बहुत त्याग किया था। अंतिम कहानी कृष्णा के बारे में है जिसका बपतिस्मा हुआ था और अपने परिवार के साथ सील हो चुकी थी जब वो एक जवान लड़की थी, पर उसके कुछ समय बाद परिवार सुसमाचार का पालन करना बंद कर दिया। अब वो अपनी किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में थी और वो कुछ गलत चुनाव कर रही थी और बहुत दुखी थी। एक दिन मैंने उसे एक व्यक्तिगत प्रगति पुस्तक दी और कहा, यह पुस्तक तुम्हारी मदद करेगी तुम्हारे जीवन में मसीह को गुनाह को सम्मानित करने में ताकि तुम अपनी इच्छा का बदलाव ला सको। मैं तुमसे आमंत्रित करती हूँ कि आज अपनी पुस्तक में काम करना शुरू करो। उस रात उसने अपनी आंखों में आंसू से के साथ कहा, आज मैंने अपनी व्यक्तिगत प्रगति की शुरुआत की। उस दिन के बाद उसने मुझे कुछ बार लिखी है। वो रविवार सभा अपनी आपासी और सेमिनरी में जाने लगी है। इस प्रकार कौन सबक मैंने सीखी है इन्हें याद करने, पश्चाताप करने और बदलने की कहानियों से सीखा। प्रथम सबक है कि सभी गलतियां करते हैं। कुछ समय पहले मैं एक 8 वर्षीय लड़की के साथ उसके बपतिस्मा में थी। दिन की समाप्ति में उसने पूरे आत्मविश्वास से के साथ कहा, मैंने पूरा दिन बपतिस्मा लिया और मैंने एक बार भी पाप नहीं किया। पर उसके संपूर्ण दिन हमेशा के लिए नहीं था और मैं निश्चित हूँ कि अब वो सीख रही है, जैसे हम सभी सीखते हैं, कि जितनी कठिनाई से हम कोशिश करें, हम हमेशा प्रत्येक बुरी स्थिति, प्रत्येक गलत चुना से बच नहीं सकते। ये उस तरह अपने आप की नियंत्रण नहीं कर सकती जैसे हमें करना चाहिए। किशोर किशोरियां विशेषकर आसानी से गलतियां करते हैं क्योंकि शैतान की शक्ति वैश्विक है और वो अपने प्रथम आवश्यक चुनाव कर रहे हैं। मोमन की पुस्तक में यही कोरिएंटन को हुआ था। कोरिएंटन को एक वफादार मिशन में सेवा करनी थी, पर उसने सोचा कि वो बहुत मजबूत था और बहुत चतुर था, खतरनाक स्थितियों और बुरी संगत से निपटने के लिए, और वो बड़ी समस्या और बड़ा पाप में फंसा जब वो गलत स्थान जाने लगा, गलत लोगों के साथ गलत चीजों करने लगा था। मेरा दूसरा सबक है कि पश्चाताप ऐच्छिक नहीं है। हमें पश्चाताप करने का आदेश दिया गया है। उद्धारकर्ता ने सिखाया कि जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे और छोटे बच्चे की तरह नहीं बनेंगे, हम किसी भी तरह राज्य के उद्धारकारी नहीं रहेंगे। एक छोटी प्याली कॉफी, एक बुरी आदत, एक बुरा चुनाव, एक गलत निर्णय के कारण हमें पूरा जीवन भर के लिए सुसमाचार के मार्ग से दूर नहीं होने चाहिए। मैंने सुना है कुछ लोगों को कहते हुए कि पश्चाताप करना बहुत कठिन है। अन्य कहते हैं कि वो दोषी होने के कारण थक चुके हैं, कि उन्हें लीडर द्वारा अपमान किया गया है। कभी कभी लोग हार मान लेते हैं जब वो गलतियां करते हैं और विश्वास करते हैं कि उनके लिए कोई आशा नहीं है। शैतान ही आशाहीन विचार रखते हैं उनके दिलों में जिन्होंने गलतियां की है। ईश्वर हमेशा आशा देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें ईश्वर के कार्य करने के लिए चुना गया था, पर पाप के कारण अगर तुम जानकार नहीं हो, तुम गिरोगे। पर याद रखना, ईश्वर दयालु है, इसीलिए उस पर पश्चाताप कीजिए जो तुम्हें किया है, जो मेरे दिए हुए आदेश के विरुद्ध है, और तुम अब भी चुने हुए हो और फिर से काम पर बुलाए गए हो। खुशियों और शक्ति से का सबसे आसान फर्तीला मार्ग है पश्चाताप और पवित्र परिवर्तन करना, हम जितना जल्द कर सके। तीसरा सबक है, हम अकेले नहीं हैं। खुद सभी वास्तविक बदलाव लाना संभव नहीं है। जब हम गलतियां करते या बुरा चुनाव करती है, जीवन को उचित मार्ग पर लौटने के लिए हमें उद्धारकर्ता की मदद चाहिए। हम हर सप्ते प्रभु भोज लेते हैं हमें बदलने के लिए, उनकी शक्ति पर अपना विश्वास प्रदर्शित करने के लिए। जब हमारे सबसे अच्छी कोशिश पर्याप्त नहीं होती है, उनकी कृपादर्शी द्वारा हम कोशिश करने की शक्ति प्राप्त करती है। ईश्वर कहते हैं, अगर इंसान हमारे पास आएंगे, मैं उन्हें उनकी कमजोरियां को दिखलाऊंगा। मैं इंसान को कमजोरियां देता हूं ताकि वो विनम्र रहे, और मेरी कृपादृष्टि पर्याप्त है सभी इंसान के लिए जो मेरे सामने अपने आप को विनम्र करते हैं। जब हम अपने आप को बदलने के लिए ईश्वर की मदद ढूंढते हैं, तब हमारे पास ये वादा है, जिसने अपने पापों का पश्चाताप किया, उस व्यक्ति को माफ किया जाएगा, और मैं ईश्वर उसके पापों को फिर याद नहीं रखता है। ईश्वर हम पर हार नहीं मानता। वो कहते हैं, मेरे पास आइए जो तुम कार्य करते और जो भारी बोझ से है, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो आनंद और शांति हमें हम प्राप्त करते हैं जब हम जानते हैं कि हमें माफी दे दी गई है, वो एक दिव्य आशीर्वाद है। वो शांति ईश्वर के समय और उनकी तारीख से आती है, पर वो आती है। मेरा अंतिम सबक है, हम बदल सकते हैं। प्रत्येक एक दिन नया मौका है अपने उद्धारकर्ता को याद करने का और उनके उदाहरण अपनाने का। बिना पश्चाताप करे हम प्रगति नहीं कर सकते। वो वही कारण पश्चाताप सुसमाचार का दूसरा सिद्धांत है। प्रेजिस स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने कहा, मसीहा जैसे गुनाहों को विकसित करने के लिए बहुत और कठोर कार्य करना पड़ेगा उसके लिए नहीं है जो कभी कभी कार्य करते हैं, और या उसके लिए नहीं है जो बराबर अपनी पूरी कोशिशें नहीं करेगा। मैंने क्रिस्टीना से सीखा कि मसीहा जैसे गुण को अपने जीवनों में विकसित करना वो चीना है कि हम बदल रहे हैं। पश्चाताप ऐच्छिक नहीं है, पर हम उसे अकेले नहीं करते हैं। हमारे पास उद्धारकर्ता है जो हमें पश्चाताप करने में मदद करेगा, अपने जीवन में उनके गुनाहों को विकसित करने के द्वारा हम जानेंगे कि हम बदलाव ला रहे हैं। बहन फॉक्स ने कहा कि सुसमाचार उसका संरक्षक था जो उसे बेकवस के सुरक्षित रखता है। उसने उसका आदर्श वाक्य था, ईश्वर का राज या कुछ भी नहीं। उद्धारकर्ता ने हम सभी को दिया था, जो भी मेरे नाम से पश्चाताप करेगा और बपतिस्मा लेगा वो संपूर्ण होगा, और अगर वो अनंत तक बर्दाश्त करेगा, देखिए मैंने उसे अपने पिता के सामने निर्दोष रखूंगा उस दिन जब मैं दुनिया का न्याय करूंगा। पश्चाताप द्वारा मैं उद्धारकर्ता को जान सकी, और जब मैं अपने आप को बदलने के लिए उसकी मदद ढूंढती हूँ, उन पर मेरा विश्वास और निर्भरता में वृद्धि होती है। मैं उनकी वास्तविकता और शक्ति की गवाही देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन।